चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, नास्तिक ही क्यों न हो, सबकी बुद्धि कहाँ लगी हुई होगी? बड़े से बड़े तीर्थ में लगी हुई होगी, इसलिए उसको तीर्थ नाम दिया है। सबकी बुद्धि को एक ठिकाने लगाने वाला।
हज का अर्थ क्या होता है? हज का अर्थ क्या होता है? हज हज मुसलमान जाते हैं, हज हज को क्या?
हिंदी में एक शब्द है हज हो गया, क्या फायदा नहीं हुआ, क्या हो गया? हज हो गई। तो उसमें जो रा है वो आधा लगा हुआ, इसलिए बोलने में तकलीफ होती है, तो क्या कह देते हैं? हज हो गई। माना जो देवताएं थे वो इस्लाम धर्म जब से आया तब से कच्चे देवताएं जो हैं वो कहां कन्वर्ट हो गए? इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गए। उन इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माओं को अंत में जब भगवान आता है तब उनको पता चलता है, अरे ये तो हर्ज हो गई, क्या हो गई है? नुकसान हो गया। फायदा हुआ या नुकसान हुआ? है नुकसान हो गया। अगर देवता धर्म में ही आदि से अंत तक रहते, हिंदू धर्म में ही रहते तो हर्ज नहीं होती, काई की हर्ज हो गई है? जो परधर्म में कन्वर्ट हो जाता है उसके लिए गीता में स्वधर्म इन धर्म से यह है परधर्म हो भयावह, तो हर्ज होगी या फायदा होगा? हर्ज हो जाती है, तो हज करने जाते हैं।
बाबा दो दाड़ों के बीच में सारी दुनिया चबा जाने वाली है।
दो दाड़े नहीं है, 32 है। हाँ तो 32 दांतों के बीच में सारी दुनिया चबाई जाती है। हाँ जी,
32 दाड़े हैं, बेहद ने 32 दाड़े।
ऊपर जो दाड़े हैं जो तैर रही है एटम बम, और नीचे समंदर के अंदर जो एटम बम तैर रहे हैं पनडुब्बियों में, वही तो बेहद है, है? उसमें सारी दुनिया चबाई जाने वाली है। ये भगवान की दाढ़ है, समझो। जब भगवान इस सृष्टि पर आता है तभी ही दिमाग में आता है कि एटम बम बनाए जाए, उससे पहले बनते हैं? भगवान आता है तो उसकी दाढ़ निकलना शुरू हो जाती है।
मुर्गियों में कहते हैं देह में आत्मा जो है और चुनना बाप को है, फिर मुर्गियों में ये भी कहते हैं कि बाप को भी देखना है, बाप की बिल्ली को देखना है और बाप के घर में भी देखना है, ऐसा क्यों कहते
मन? मुर्गियों में आप पूछना क्या चाहते हैं, इसे विरोधाभास कहाँ पर है?
हमारा दूसरा ये है कि बाबा मुर्गियों में बार बार अलग अलग डायरेक्शन क्यों देते हैं?
कहाँ अलग अलग डायरेक्शन देते हैं बाबा? तो बाबा एक है तो एक ही डायरेक्शन देगा या अलग अलग डायरेक्शन देगा? अलग कहाँ हुआ?
तो हमारे समझ में अलग आ रहा है।
क्या अलग हो गया?
आत्मा को देखना है।
आत्मा को देखना है?
हाँ, बात की बात को सुनना है।
हाँ, आत्मा को देखना है और सब आत्माओं की बात नहीं सुनना है। किसकी बात सुनना है? जो सुप्रीम है उस आत्मा की बात को सुनना है। है तो वो भी आत्मा या नहीं आत्मा है? तो वो भी आत्मा है, तो विरोधाभास कहाँ है?
एक मुर्गी भी कहा है कि जब बाप दक्ष होने का समय आवे तो सीढ़ी और लक्ष्मी नारायण के
बना, इब्राहिम बुद्ध और क्राइस्ट के चेहरे भक्ति मार्ग में दिखाते हैं चित्रों में, वो चेहरे देखने से ट्रांसलाइट के देखने में आ रहे हैं या जड़ देखने में आते हैं? पारदर्शी देखने में आ रहे हैं या देखने से ऐसा लगता है कि उनकी बुद्ध रूपी आत्मा इस दुनिया में धरी हुई है? कैसे देखने में आते हैं? पारदर्शी देखने में आते हैं। ऐसे ही जो ब्राह्मण बच्चे हैं जब उनके चेहरे पारदर्शी बनेंगे, ट्रांसलाइट के बनेंगे, माने वो रोशनी उनके चेहरों में और उनकी आंखों में दिखाई देगी लोगों को, तो भगवान भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। भगवान बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होगा या दुनिया वालों के द्वारा प्रत्यक्ष होगा? किन बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होगा? जो अव्यक्त स्टेज वाले होंगे, जिनके चेहरे फरिश्ताई जैसे दिखाई पड़े, फरिश्तों जैसे चेहरे दिखाई दें, ऐसे ट्रांसलेट के चेहरे ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। अरे फरिश्तों की बुद्धि देहधारियों में लगी हुई होती है क्या?
नहीं।
देह के संबंधों में लगी हुई होती है?
नहीं।
तो कर्म बंधन से परे हो जाते हैं या कर्म इंद्रियों में बंधे हुए होते हैं?
है?
परे
हो है। देवी देवताओं के चित्र में
हाँ जी, उसका बेहद में अर्थ ये है कि बुद्धि से जो भी संकल्प करेंगे, जिस आत्मा के लिए भी संकल्प करेंगे, चाहे वो प्रैक्टिकल में पास्ट में दुश्मन ही बनकर के क्यों न रहा हो, वो बुद्ध रूपी हाथ सच्चाई का काम करेगा या दुख देने का काम करेगा? सच्चाई का काम करेगा। इसलिए बाबा भी बच्चों को कहते हैं, बच्चे सुख दो, सुख दो, दुआएं दो, दुआएं, यही हाथ ऊपर करना है।
है
क्या?
देवी के तो बाल लंबे दिखाते
हैं
खुले हुए, लेकिन देवताओं के भी खुले हुए दिखाते हैं।
देवी देवताओं के बाल लंबे दिखाते हैं, देवी देवताओं के भी
चित्रों में, देवी देवताओं के बाल जो है खुले हुए दिखाते हैं, उसका
भी खुले हुए दिखाते हैं का मतलब सुलझे हुए हैं क्या? साधु संन्यासियों की तरह जटाएं नहीं दिखाई गई है? कोई देवता को जटाएं दिखाई जाती है? उलझे हुए बाल दिखाई देते हैं? नहीं, सुलझे हुए हैं। ज्ञान की जटाएं सुलझी हुई है या उलझी हुई है? सुलझी हुई है। हर ज्ञान का प्रश्न समाधान हुआ पड़ा है।
गुरु को रावण कहते हैं, शिव भी तो गुरु भी है, सदगुरु भी है, तो गुरु को भी रावण कहेंगे?
शिव जिसका नाम और नाम के आधार पर काम कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? रावण का नाम कल्याणकारी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रावण का अर्थ ही होता है जो लोगों को रुलाता है। रावयते लोकान इति रावण, वो रावण कहा जाता है। तो अंतर क्या पड़ा? जो दुख देता है वो रावण, और जो सुख देता है वो राम। समाधान हो गया?
सोना माना सच्चाई
है,
सोना माना सच्चाई,
सोना
चांदी माना क्या
है? सोना जिसे कहते हैं वो सत्युग में ही होता है क्या? सोना कहाँ होता है? सत्युग में ही होता है। शांति धाम में सोना सोना नहीं होता। शांति धाम में क्या होता है? शांति धाम में आत्मा होती है कि नहीं? और आत्मा हीरे की तरह चमकती हुई होती है या जो जड़त्वमयी चीजें हैं, सोना चांदी पन्ना मूंगा मोती माणिक्य, ये जड़ है या चैतन्य है? ये जड़, जिसमें ज्ञान की रोशनी भरी हुई है वो है हीरा। तो वो परम धाम को जब तुम बच्चे इस सृष्टि पर उतार लेंगे तो हाथ में क्या होंगी? है ही रे व्यसन हो।
ये पता है कि कभी जो आत्मा कभी कल्याण के निमित्त बनते हैं, वो कभी अकल्याण के निमित्त बनते
ठीक है। जब सतो प्रधान बनती है तो अरे सतो प्रधान जो बनेगा वो तमो प्रधान भी बनेगा। जो जितना तमो प्रधान बनेगा वो उतना सतो प्रधान बनेगा। जो जितना ऊंचा जाएगा वो उतना नीचे जाने की भी ताकत रखता होगा।
टीवी जड़ वस्तु में भी जब बाबा का बुद्धि सुनते हैं या दृष्टि लेते हैं तो वो भी वाइब्रेशन मिलता है वहाँ से। तो वैसे कम पावर में कम जैसे सम्मुख से कम इसमें मिलता है तो वैसे मंदिरों की मूर्तियों में भी वो वाइब्रेशन सुनते
हैं। अरे मंदिर की जो मूर्तियाँ होती है उन मूर्तियों में रोशनी होती है क्या?
नहीं,
नहीं होती। और टीवी में तो
रोशनी,
टीवी में तो रोशनी है तो अंतर नहीं होगा। पारदर्शक चेहरा टीवी में दिखाई देता है और पत्थर की मूर्तियों में कितनी भी बढ़िया पत्थर की मूर्ति हो वो पारदर्शीपना नहीं हो सकता।
बाबा वाइब्रेशन और वृत्ति में जो वाइब्रेशन
वृत्ति वाइब्रेशन एक ही बात।
डायरी में जैसे शिव बाबा का साइन होता है
इन लोगों को देर हो रही है या घर में जाके कलह कलेस होने वाला है वो निकल जाए। हाँ तो फिर तुम इंतजार में बैठे हो कि रावण के सर कब कटेंगे तब हम जाएंगे।
डायरी में साइन होती है तो सबसे पहले हम माँ का साइन करते हैं। डायरी में हम साइन करते हैं तो सबसे पहले हम माँ लिखते हैं उसके बाबा लिखते हैं।
तो आज भी
जैसे शिव बाबा मौजूद है
माँ
मौजूद है
फिर
भी
माँ
का साइन किया।
तुम्हारी आंखों में पट्टा चढ़ा हुआ है, इतना ज्ञान सुनाया जा रहा है, तुम अर्धनारीश्वर को देख ही नहीं पा रहे तो तुम्हें माँ दिखाई पड़ेगी कि नहीं दिखाई पड़ेगी? बिना अम्मा के बिना अम्मा के परिवार की पालना हो पाती है? होती है नहीं होती है तो तुम्हारी आंखें देख नहीं रही कि पालना हो रही कि नहीं। पालना हो रही तो बिना अम्मा की कैसे पालना हो रही
है? जगदम्बा ये जो घूंघट में है तो
घूंघट में है तो सबके लिए घूंघट थोड़ा ही होता है। अरे घर वालों के लिए घूंघट होता है या बाहर वालों के लिए घूंघट होता है? बाहर वालों के लिए घूंघट मुसलमान होगा।
क्लास में यादें बैठे ना तब कृष्ण जी के
क्या
जब मैं क्लास में बैठी थी ना याद में तो देखे कृष्ण जी के बाबा जी
कृष्ण दिखाई पड़ा।
हाँ दिखाई पड़ा
माने साक्षात्कार हुआ है?
हाँ,
अच्छा माने जब क्लास में बैठे हैं तब दिखाई पड़ा।
हाँ,
और जब चाहे तब देखे ऐसा नहीं होता है, है? अच्छा जब चाहे तब देखे वो ज्यादा अच्छा या क्लास में जब याद में बैठे सबके साथ संगठित याद में तब दिखाई पड़े साक्षात्कार हो वो अच्छा? जब चाहे तब देखे संगठन में भी देखे।
गणेश जी का जन्म पार्वती के महल से दिखा हुआ है। गणेश जी का जन्म पार्वती के महल से दिखा हुआ है तो कार्तिक का जन्म कैसे हुआ?
किसका?
कार्तिक
कार्तिक
कितने मुंह होते हैं कार्तिक के? छह मुंह होते हैं। अगर छह मुख दिखाए गए हैं तो छह मुंह से बात करता होगा कि नहीं? है जरूर छह मुंह से बात करता होगा। और वो छह धर्म कौन कौन से हैं? इस्लाम धर्म दिखा रहे हैं क्या? शीशा है क्या? वो छह धर्म कौन कौन से हैं जो नास्तिक नहीं बनते? कौन कौन से हैं? इस्लाम धर्म और क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म, संन्यास, इस्लाम वो क्या नाम
सिख
संन्यास मुस्लिम और सिख धर्म, ये छह धर्म पावरफुल ऐसे हैं जो दक्षिण भारत में उस सुब्रह्मण्यम स्वामी की बहुत पूजा होती है। ये विदेशी धर्म है, विधर्मी है या स्वधर्मी है? है? विधर्मी और विदेशी बन जाते हैं, इसलिए दक्षिण भारत को भारत का विदेश का कार्तिकेय छह माताओं की पालना लेता है, इसका संग लेता है, छह माताओं की गोद में पलता है। तो छह माताएं वो छह प्रकार की धरणी है या नहीं है? छह प्रकार की धरणी है, तो छह प्रकार की उनकी भाषा है, छह प्रकार की उनकी धारणाएं है, इसलिए वो बच्चा भी वैसा ही बनेगा।
और बाबा कल्पवृक्ष का जो चित्र है उसमें गांधी जी का चित्र दिखाया, तो उनका क्या मतलब है?
कल्पवृक्ष का जो चित्र है वो गांधी जी को कलयुग के अंत में दिखाया है या दूसरे युगों में दिखाया है? कलयुग अंत में दिखाया है। और कलयुग अंत में कौन सी गवर्नमेंट का शासन होता है भारत में?
कांग्रेस,
कांग्रेस गवर्नमेंट का। और कांग्रेस गवर्नमेंट का मुखिया कौन है? है? कौन है? अरे कौन है? गांधी जी। गांधी जी की बिटिया, जिसे वो बिटिया की तरह मानते थे, बेटी, उसका नाम क्या पड़ा? इंदिरा गांधी। ऐसे ही यहाँ भी है ब्राह्मणों की दुनिया में, क्या बाबा गांधी नहीं कहते, बाबी कहते गांधी, उनकी बिटिया भी ऐसी होगी गांधी। जो शासन चलता है वो शासन में यथा राजा तथा प्रजा। अब बिटिया अंधेरा बनाने वाली है कि सोजरा बनाने वाली है? अंधेरा बनाने वाली है। तो जो फॉलो करने वाले हैं वो क्या होंगे? अंधेरा कायम करेंगे या सोजरा कायम करेंगे? अंधेरा कायम करेंगे। इस्लाम धर्म क्या कायम करता है दुनिया में? अंधेरा कायम कर देता है। जो भी उसे फॉलो करने वाले हैं वो भगवान बाप को नहीं पहचानने देते, अज्ञानता फैलाते हैं। तो अंतर है गांधी जी में, ठंडी प्रकृति के थे या गर्म प्रकृति के थे? चंद्रमा ठंडी होता है, ठंडी प्रकृति का है या गर्म प्रकृति का है? ठंडी प्रकृति है। इतनी ठंडी प्रकृति है कि सब बच्चों की बात मान लेते और उनके मुकाबले एक दूसरी अस्थि भी थी या नहीं? वो गर्म प्रकृति वाली थी, वो कौन थी? सुभाष चंद्र बोस। जो सुभाष चंद्र बोस था वो गर्म प्रकृति वाला सूर्य था और उसका प्रभाव जापान तक फैला हुआ था। सूर्य कहां से निकलता है? पूर्व देश से निकलता है। आज में वो सफल हुआ या अस्त हो गया?
सफल
है। गांधी जी के मुकाबले सुभाष चंद्र बोस सफल हुआ या असफल हो गया? असफल हो गया। वेद में भी कौन है? वेद में भी कोई आत्मा है जो आज में अस्त हो गई, असफल हो गई है?
सुभाष चंद्र बोस वाली आत्मा
आत्मा नहीं, वो तो एक मिसाल है।
नहीं बाबा, जैसे
वो प्राप्ति करने वाली आत्मा वो है जो कलयुग के अंत में प्राप्ति करती है।
लेकिन
और जो असली ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा है वो तो सृष्टि के आदि में ही होते हैं।
बाबा हमेशा बुद्धि में बताया जाता है ना, जैसे
वो मिसाल दिया गया उनका,
पंडित नेहरू, नेहरू रूप और सुभाष चंद्र बोस,
ठीक है,
तीनों।
अभी ब्राह्मणों की दुनिया में पक्के सन्यासी कौन है?
बेसिक
ब्राह्मणों की दुनिया दो प्रकार की है, एक बेसिक वाली एक एडवांस वाली। कौन सी कब बात कर रहे हैं
आप?
एडवांस में बेसिक में नहीं पूछेंगे? बेसिक में मालूम है?
नहीं मालूम है।
बेसिक में भी नहीं मालूम? अरे बेसिक में वो है जो घर घाट छोड़ करके बैठे हुए
हैं।
इनसे पूछो तुम्हारा पति परमेश्वर कहाँ है, तुम विधवा हो या सधवा हो, तो क्या कहेंगे? है? मर गया या जिंदा है, क्या कहेंगे? अरे
कोई बन नहीं,
मर गए। और भारत देश में सदवाओं की पूजा होती है, यहाँ विधवाओं की पूजा नहीं होती। सन्यासियों के भी अगर मंदिर बनाए जाते हैं तो उनको छाया दी जाती है या ऐसे ही नेताओं की तरह मैदान में रख दिए जाते हैं? छाया हम कहाँ रखते हैं? सन्यासी मंदिर ऐसे ही रख दिए जाते हैं। तो इससे साबित होता है उन्होंने नई दुनिया का मकान बनाया ही नहीं है, और भगवान तो आकर नई दुनिया का मकान बनाते हैं, और उसके जो सहयोगी बच्चे बनते हैं देव आत्माएं वो भी नई दुनिया का मकान बनाने में सहयोगी बनते हैं। इसलिए देवताओं के भी मंदिर बनते हैं और भगवान के भी मंदिर बनते हैं।
बाबा मीरा कृष्ण की बहुत भक्ति थी तो वो भी ज्ञान में आई होगी क्या?
अरे जो भक्ति करेगा वो ज्ञान में नहीं आएगा है? और हाँ जी हाँ जी, और
बाबा
है
अज्ञान में तो ये आत्मा कभी गिलानी करती है,
है?
अज्ञान में
हाँ
ये आत्मा पति की भी गिलानी करती है।
काई की गिलानी करती है?
पति की गिलानी करती है।
पति की गिलानी करती? पति कौन है?
बहन की।
अज्ञान में तो अज्ञानी ही पति होगा।
बहन की भी गिलानी करती है।
किसकी गिलानी करती है?
पति की भी, बहन की भी गिलानी करती है
अज्ञान में।
अज्ञान में
हाँ।
फिर ज्ञान में आने के बाद अज्ञान में भक्ति करता है बच्चा तो उसकी भी गिलानी करती है। फिर ज्ञान में आने के बाद भी बच्चे की भी गिलानी करती है।
ज्ञान में आने के बाद भी
बच्चे की गिलानी करती है?
बच्चे की,
बच्चे की भी गिलानी करती है।
बच्चे की गिलानी करती है?
ज्ञान में तो करती है।
ज्ञान में तो
ज्ञान में आने के बाद,
ज्ञान में आने के बाद भी पति की गिलानी करती है?
बच्चे की
पति की नहीं करती, पति की भी करती है। जब पति की ही गिलानी कर दी, बाप की गिलानी कर दी, तो बच्चे की अपने आप हो गई कि नहीं हो गई?
बहन की भी गिलानी करती है। बहन की भी गिलानी करती है।
अरे सारी दुनिया जो है वो गिलानी करने योग्य है या गायन करने योग्य है? तो चोर को चोर कह दे तो क्या बड़ी बात हो गई? बड़ी बात हो गई क्या? गुरु नानक ने कहा असंख्य चोर हराम को, गलत कह दिया क्या? एक शिव बाबा की ग्लानी न करे, 63 जन्म शिव बाबा की ग्लानी करते रहे, सर्वव्यापी है सर्वव्यापी है सर्वव्यापी है, और एक आखिरी जन्म में भी पहचान करके अगर ग्लानी करे तो पाप चढ़ेगा या पुण्य चढ़ेगा? पाप चढ़ेगा। चोर को चोर कह देने से, चोर चोरी करके भाग रहा है, सारा माल उठा के ले जा रहा है, अब कोई अगर चिल्ला दे चोर है चोर है चोर है तो पाप चढ़ेगा?
नहीं,
ये तो यही कह रहे। बोलो
बाबा।
हाँ
ये बुढ़ी में कहा गया कि बच्चे बाप को प्रश्न करते देह अभिमान में आकर,
देह अभिमान में आकर
प्रश्न करते बाप को,
प्रश्न करते प्रश्न चित्त बनते,
प्रश्न करते है
वही प्रश्न चित्त बनते
बच्चे बाप को।
हाँ
तो वही प्रश्न नहीं करना चाहिए बाप को, बाप को प्रश्न नहीं करना चाहिए।
नहीं, किसी के अंदर कहीं से कचरा आ गया, मान लो वस्त्रों में कीचड़ लग गया तो साफ नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। ऐसे ही ज्ञान में चल रहे हैं, दर्पण जो है मन बुद्धि रूपी, उसमें कहीं से इधर उधर से इस पार्टी से उस पार्टी से संग में रंग में आने से, इसकी बात सुनने से उसकी बात सुनने से उसकी बात सुनने से कचरा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब कचरा आएगा वो चाहे हमारी अपनी आत्मा में कचरा आया हो और चाहे जो प्रवेश करने वाली आत्मा है उसका कचरा हो। अरे प्रवेश करने वाली जो आत्माएं बीके से आ रही है उनमें कचरा नहीं आता है? उनमें भी कचरा आता है। तो कोई भी प्रकार का कचरा अंदर आ गया है तो कचरे की सफाई नहीं करनी चाहिए?
करनी चाहिए।
तो बुरा तो नहीं है, बाबा मना करते हैं कि प्रश्न मत पूछो। क्या कहा था? नहीं चाहिए। नहीं, बाबा कहते हैं कि बाप से तुम क्या प्रश्न करेंगे, जब ज्ञान में आए थे तो कुछ तुम जानते थे क्या?
नहीं,
कुछ भी नहीं जानते थे। तो बाबा जी एक सामान्य बात कह दी, फिर भी अगर संग का रंग लग ही गया है, बाबा ने तो मना किया। क्या मना किया? एक से सुनेंगे तो अभिविचारी ज्ञान होगा और अनेकों से सुनेंगे तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। तो व्यभिचार का दोष तो लगेगा ना आत्मा में, वो बार बार प्रश्न पैदा करेगा। कचरा जब अंदर होता है, खून में कचरा हो तो खुजली वगैरह पैदा होगी कि नहीं? खुनसी फोड़ा पैदा होगा कि नहीं? बीमारियां पैदा होंगी कि नहीं? तो ऐसे ही है, ईश्वर ज्ञान सुना रहा है, हमने अंजाम कर दिया यज्ञ के आदि में, खून से लिख लिख करके अंजाम किया और अभी अभी खून से लिखवाना तो बंद कर दिया। हिंसा मत करो। क्या करो? स्टाम्प पेपर पर लिख के दे दो ताकि एक लिखा और 100 पक्का बराबर हो जाए। ये ना कह सको तो हमने ऐसे नहीं किया था। तो अंजाम कर लिया कि वास्तव में भगवान बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है, तो एक की बात सुननी चाहिए या औरों की बात का एकांत पर धरनी चाहिए? एक बाप की बात सुने, दूसरों की बात अगर सुने भी तो दूसरे कान से निकाल दे, उसको अंदर धारण करके और उसको मनन चिंतन मंथन करने की क्या दरकार? तो प्रश्न पूछना खराब बात नहीं है।
वही पूछना था मैं।
हाँ जी, कचरा अगर अंदर आ गया है, मान लो किसी ने हमको कन्वर्ट कर दिया है, तो फिर उसको निकालना अच्छा है। बाबा मना नहीं करते हैं कि प्रश्न मत पूछो।
बाबा, साकार बाप का बाहर की दुनिया अज्ञान आत्माओं से भी कनेक्शन में आपको है, जैसे बस में, ट्रेन में, तो क्या उन आत्माओं को भी वाइब्रेशन का लाभ मिलता है?
वो पहचानती है क्या? ये मन बुद्धि का सवाल है या देह का सवाल?
बाबा वो शास्त्रों में सिखाते हैं कि कभी गुरु जी के ऊपर अगर शिष्य को आक्रमण करना रहा
है,
गुरु जी के ऊपर शिष्य को आक्रमण करना रहा,
किसको? शिष्य,
शिष्य को।
हाँ,
तो वो गुरु से परमिशन लेता था।
हाँ,
तो ये बात अच्छी है कि खराब है?
क्या
जो गुरु से परमिशन वो अगर उसके अंदर,
माने प्रश्न करना है?
नहीं नहीं बाबा,
यहाँ आक्रमण क्या ला जा, क्या गला काटे हुए? ऊपर पत्थर अत्थर लेके तो नहीं बैठे? नागपुर है। हाँ बोलो बोलो, ये ब्रह्मकुमारी आश्रम नहीं है, फिर होके बोलो।
चेले को लगता है, चेले को वो शिष्य को ऐसा लगता है कि गुरु जी के ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहिए, पर ऐसा कुछ परिस्थिति आ जाती है जो उसके वजह से, जैसे परशुराम और विष्णु पितामह का जो युद्ध बताया है, तो उसी का देखे कि ये अच्छा होता है कि गलत है, जो परमिशन मिलती है, जो परमिशन देते हैं ना, तो वो अच्छी बात है कि नहीं।
ये कहते हैं कि तुम मत पूछो, अरे सिखाने वाले में ज्यादा ताकत होगी या सीखने वाले में ज्यादा ताकत होगी? सिखाने वाले में ज्यादा ताकत होगी, सीखने वाले में ताकत कम होती है। इसलिए गुरु सच्चा तो वो है, अस्त्र शस्त्र जब सिखाता है तो ये न कहे कि हमारे ऊपर पूरा वार नहीं करना, ये कहेगा शिष्य से? नहीं, पूरा वार करो और हम तुम्हें बचाना सिखाएंगे। हाँ बोलो
बाबा। हाँ जी, माया झूठी काया झूठा सब संसार कहते
हैं,
जी माया झूठी काया सब संसार कहते हैं, तो दुनिया के लिए लागू होता है?
किसके लिए लागू होता है? झूठा सब संसार तो सबके लिए लागू हो गया ना, अरे कोई बचा उसमें जिसके लिए लागू नहीं हुआ? इन आंखों से जो भी देखते हो वो सारा झूठा है या सब बोल कर या सच्चा है? है इन विनाशी आंखों से जो कुछ भी देखते हो वो झूठा है या सच्चा है? है क्या है? सब झूठ है। हाँ जी,
बाबा।
हाँ जी,
एक जगह सेवा करने के लिए गए तो उन्होंने, हमने जो बताया साकार में परमात्मा का पाठ चल रहा है, तो उन्होंने कहा जैसे साइंस के इवेंट्स जो है वो सिद्ध करके दिखाते हैं, वैसे आप लोग सिद्ध करके क्यों नहीं दिखाते?
क्या
कि भगवान का पार्ट इस सृष्टि पर, भगवान का पार्ट जो चल रहा है यही भगवान है, ये बात सिद्ध करके?
विज्ञान जो सिद्ध करता है वो स्थूल चीजों को सिद्ध करता है या सूक्ष्म चीजों को सिद्ध करता है? स्थूल तत्वों को सिद्ध करता है, और हमारा ज्ञान स्थूल तत्वों का है या आध्यात्म ज्ञान है? आदि माने अंदर, आत्मा माने आत्मा, आत्मा के अंदर का ज्ञान है। वो डॉक्टर लोग आत्मा को मानते हैं क्या? वो तो मानते ही नहीं, तो सिद्ध करने की बात ही नहीं। हम उनको कैसे सिद्ध करेंगे? हम तो उनको सिद्ध करेंगे जो आत्मा को मानते हैं, जो आकर के समझते हैं और कहते हैं आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सर क्या, लड़ क्या, हम इन बातों को नहीं मानते, तो उनको चलाए देना चाहिए।
सर वैसे वो मानते हैं, उन सब बातों को वो मानते हैं।
कौन मानते हैं? वैज्ञानिक लोग?
नहीं नहीं, जिस टीचर के हम सेवा करने गए थे ना, तो वो मानते हैं आत्मा परमात्मा भगवान को मानते हैं, लेकिन इसी मुकर्रर रथ में
भगवान को मानते, जब जानते ही नहीं तो मानते क्या है?
नहीं ये
आप क्यों कहते हैं वो मानते हैं?
उन्होंने, हमने जो बताया उसके ऊपर कुछ बात नहीं की, इसलिए उन्होंने सब यो मान लिया है।
मान लिया? मान लिया?
हाँ।
भगवान कौन है मान लिया?
नहीं भगवान कौन है, लेकिन इसी मुकर रथ में जो पाठ चल रहा है भगवान का, ये सिद्ध करके दिखाओ, ऐसे वो बात बोलते
हैं। अरे ये सिद्ध करके कोई स्थूल चीज है जो सिद्ध करके दिखाएंगे? ये तो ज्ञान की बातें हैं, ज्ञान से ही सिद्ध की जाएंगी। वो पांच तत्व, पांच तत्वों की दुनिया, पांच तत्वों का बना हुआ शरीर, ये सब अज्ञान है या ज्ञान है? जो कुछ इन आंखों से देखते हैं वो सब क्या है? वो सब अज्ञान अंधकार है। वो कहते हैं कि हम आत्मा को नहीं मानते, हम कहते हैं हम तुम्हारी सारी दुनिया को नहीं मानते, सब आसार है, सब खत्म होने वाला है, आज दिखाई पड़ रहा है कल खत्म हो जाएगा।
गीता पाठशाला को भी मधुबन का नक्शा बनाओ, कोई नियम होते
क्या? मैंने मिनी मधुबन तुमने गई नहीं कभी?
बाबा ने गीता पाठशाला
मिनी मधुबन में गई कि नहीं? वहाँ कुछ गीता पाठशालाओं के मुकाबले कुछ नए नियम देखे या नहीं सुने? बस वैसा बनाओ। प्रसन्न लोग भूख लगी इन सब सितारों में सबसे जास्ती खातरी होती है, है? कुमारगंज भाइयों के बीच में सबसे जास्ती मान्यता बाबा देते थे विश्वेश्वर बाबू को, और कन्या माताओं के बीच में सबसे जास्ती कुमारका दादी को। ये निर्णय शक्ति और परख शक्ति की कमी थी, इसकी वजह से सारा गड़बड़ हुआ।
जो पतित से पावन बनते नहीं है, वो पतित पावन सीताराम कहकर बुलाते भी नहीं
है।
वो बच्चे पतित से पावन बनते हो तो पतित पावन सीताराम कहकर बुलाते हो,
भक्ति मार्ग में भी बुलाते रहे होंगे, क्रिश्चियंस और मुसलमान बुलाते हैं क्या? है
लेकिन पावन तो सभी बनते हैं, बाप आए पावन
100% 100% पावन बनते हैं तो आप पवित्र ही कहेंगे या पूरे पावन कहेंगे, ब्राह्मण कहेंगे या अधूरे ब्राह्मण कहेंगे? अधूरे ब्राह्मण होंगे तो अधूरे देवता बनेंगे, जो अधूरे देवता हैं वो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे।
बाबा बेहद की दो रोटी कौन सी
है?
बेहद की दो रोटी,
बेहद की दो रोटी। राम की सेना में बंदर बहुत थे, क्या क्या तो बंदरों की बुद्धि भी कैसी चलती है, है? बंदर बुद्धि चलेगी या मंदर लायक बुद्धि चलेगी, कैसी चलेगी? बंदर लाइक चलेगी, बंदरों की बुद्धि बंदर लाइक चलेगी। तो प्रश्न आया कि जो ब्राह्मण की दुनिया में जो बेहद की दो रोटी बताई वो क्या है? क्या उसका नाम दिया है? रो और टी। रो माने पहले रोती है, पहले आंसू बह जाते हैं, और जब एक बार आंसू अच्छी तरह बह जाते हैं फिर उसके बाद आराम से चुस्की मार मार करके फिर आंसू निकलना बंद बंद हो जाते हैं, पीते रहते हैं। दो प्रकार की रोटियां हैं क्या? कौन सी रोटी हुई है? एक तो है जो 21 जन्मों की सहयोगिनी है, और दूसरी वो है जो 63 जन्मों में ज्यादा सहयोगी बनती और विरोधी भी बहुत बनती। क्या इसे दुनिया के नारकीय रावण रहते की दुनिया के जो युगल होते हैं वो आपस में स्नेह ही स्नेह करते हैं कि लड़ते झगड़ते भी ज्यादा है? लड़ते झगड़ते भी बहुत हैं और आपस में स्नेह भी बहुत करते हैं। तो दो प्रकार की रोटियां हो गई, एक 21 जन्म की चिर संगिनी और दूसरी 63 जन्मों की संगिनी। ये भोजन है आत्मा का, स्नेह एक रोटी से मिलता है, आत्मिक स्नेह क्या चाहिए? आत्मिक स्नेह अंदर का स्नेह चाहिए या बाहर का प्यार चाहिए? है आत्मिक स्नेह वो सदैव सुखदायी है, और जो बाहर का प्यार है वो सदा का सुखदायी नहीं हो सकता। तो ये अन्न है, रोटी है, आत्मा के दो प्रकार के भोजन, एक को पानी कहा जाता है और एक को अन्न कहा जाता है। अन्न माने अनाज, अनाज खाने से शक्ति आती है, रोटी खाने से क्या आता है? शक्ति आती है, और पानी पीने से शक्ति नहीं आती है, लेकिन जो खाया हुआ है वो अच्छा है। तो ये अनाज दो प्रकार का है, इससे दो प्रकार की रोटी बनती है। इसलिए जो बच्चा बुद्धि होते हैं उनकी बुद्धि में ये रोटी पोटी का कुछ भी प्रश्न नहीं आता है। आता है, है? अरे भीमसेन ने कौन सा भोजन खाया द्रौपदी से? हद का भोजन खाया होगा या बेहद का भोजन खाया होगा? बेहद के भोजन की बात है, उन्होंने बड़ा पेट दिखाई दिया, लंबा चौड़ा शरीर दिखाई दिया, राक्षस जैसा। लेकिन ये मेंटेलिटी की बात है, इतना स्नेह मिलता था, स्नेह बहुत बड़ी शक्ति है, जिस शक्ति के आधार पर भीमसेन अकेले ने 100 कौरवों का वध किया था। अकेले भीमसेन ने 100 कीचकों को मारा था, अकेले भीमसेन ने हिडंब जैसे ढेर राक्षसों को मारा था। और
ब्रह्मा द्वारा स्थापना कहते हैं, यह तो स्थापना करना सकते
हैं,
यह तो स्थापना करना सकते क्योंकि यह तो पति कहलाता
है। दाढ़ी मूछ वाला पति तो होता है या पागल होता है? अरे दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा दाढ़ी मूछ पतित को होती है या पावन को होती है? पतित को होती है। जो दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा है तो पतित है, वही दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा जब कोई क्लीन शेव माता में प्रवेश करता है तो दाढ़ी मूछ होती है? है नहीं होती। तो ये ब्रह्मा वो काम नहीं कर सकता, प्योरिटी से होती है स्थापना और इम्प्योरिटी से होता है विनाश। और
होने के बाद निकाल देते हैं
अग्नि परीक्षा का मतलब है योग अग्नि। और योग अग्नि में तप गया, जो योग अग्नि में तपता है वो वो विकारों में पास होता है या फेल होता है? है? पास हो जाता है। योगाग्नि में तो पास हो गया, यानी योग बल में तो उससे ज्यादा पावरफुल नहीं है कोई, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में फेल हो जाए तो क्या कहेंगे? है? योग अग्नि में सीता पास हो गई। योग अग्नि में पास होने के बाद तो जो बच्चों का मोह आता है उसमें माताएं पास होती हैं क्या? नहीं होती है। यही गड़बड़ है, इसलिए बोला है माताएं अगर मोह के ऊपर विजय प्राप्त कर ले तो समझ लो पास हो गई, दूसरा कोई पुरुषार्थ उनको करने की दरकार नहीं है। और प्रश्न आया है, सारा मदार याद की यात्रा पर है, जब सारा मदार याद की यात्रा पर है तो शिव बाबा को इतना ज्ञान सुनाने की क्या दरकार? है? बताओ भाई इसका जवाब किसके पास है?
ज्ञान होगा तो याद अच्छी है। ज्ञान होगा तो याद अच्छी है,
पहचान होगी, पहचान होगी तो याद अच्छी रहेगी।
अच्छा, अभी तक इतने साल हो गए, 70 साल से ऊपर हो गए ज्ञान सुनते सुनते, तो पहचान हो गई होगी है? और पहचान के आधार पर याद भी अच्छी हो गई होगी है? तो ज्ञान का विस्तार होने की दरकार क्या है?
काम आएगा ज्ञान का विस्तार, 63 जन्म तो काम आएगा।
तो 63 जन्म जो ज्ञान का विस्तार भक्ति हुई,
भक्ति का सब ज्ञान होता है।
63 जन्म जो ज्ञान का विस्तार भक्ति हुई उससे मनुष्य जाति का पतन हुआ, उत्थान हुआ, पतन हुआ। तो विस्तार होना अच्छा है या सार में टिकना अच्छा है?
सार में टिकना अच्छा,
तो बस यही गड़बड़ है। क्या ज्ञान भी लेते जाए और जितना ज्ञान लेते जाए उतना पचाना भी जरूरी है।
और बस सुंदर रामायण में
है,
रामायण में सुंदरकांड में 2 चौपाई दिया है बाबा, बाबा एक कौन सी सही और कौन सी गलत? एक में दिया है जहंगीर चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता
है,
फिर दूसरे में दिया है कि गिर पर चल लंका तह देखी कहने जाए तो मेरे में
क्या क्या शास्त्रों की बात सुनाई नहीं जा रहा विजय करो क्या बात
धीरे धीरे बोलो
वैसे रामायण में सुंदर कांड में दिया है पहला चौपाई
चौपाई चौपाई मत बोलो प्रश्न करो सीधा
कि बाबा जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखते थे
हाँ
वो नीचे चला जाता था
हाँ,
फिर वही आगे दिया है कि पर्वत पर चढ़ के हनुमान जी ने लंका देखा
हाँ पर्वत पर चढ़कर
लंका देखा
लंका देखी
हाँ तो या तो फिर बाबा एक तरफ बता दिया कि जिस पर्वत पर पैर रखते थे
हाँ
नीचे चला जाता था
हाँ
आगे बता दिया उसी पर चढ़कर फिर लंका देखी
हाँ तो पर्वत एक ही है या पर्वत अनेक है? है?
अनेक ना
कोई एवरेस्ट चोटी है कि नहीं?
नहीं
है? एवरेस्ट चोटी एक ही है कि अनेक है?
एक है,
एक ही है।
और जो हनुमान जी लंका को लांग लेते हैं
है
हनुमान जी लंका को लांगते हैं
है
समुद्र को डांटते हैं जब हनुमान जी को,
हाँ?
उनको याद नहीं आता उनकी ताकत का, तो उनको ताकत का एहसास दिलाते हैं जामवंत जी,
हाँ?
तो इसमें ज्ञान में कैसे समझे कि कौन किसको याद दिलाते हैं?
जामवंत कौन है? क्या प्रश्न क्या है?
मतलब हनुमान जी अपना बल भूल जाते हैं, उनको जामवंत जी अपना,
तो हर आत्मा अपना बल भूली हुई है, आत्माओं को अपनी शक्ति का ज्ञान है नहीं है? हाँ,
मतलब सारे बंदर अनुमान हो गए।
तुम सब नंबरवार हो या अब्बल नंबर हो? नंबरवार हो, नंबरवार पूछने वाले हैं। हाँ, रह जाएगा, विनाश नहीं होगा,
अंतिम आठ दिन का जो विनाश होगा उसमें रह जाएगा। तो ये जो 450 आत्मा है उनको
है,
450 आत्मा है उनको काम है।
माने जब शांति धाम परम धाम को तुम बच्चे इस सृष्टि पर उतार लेंगे, उतारेंगे ना, है? तो शांति धाम ही होगा, सुख धाम नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? सुखधाम और शांति धाम की स्थापना एक साथ होती है या आगे पीछे होती है? है? एक तरफ शांति धाम का गेट खुलता है और दूसरी तरफ सुखधाम का भी गेट खुलता है। तो जो सुखधाम का गेट खुलता है उस सुखधाम में जो विजय माला के मणके बनते जावेंगे, पांच विकारों पर विजय प्राप्त करते जावेंगे, इनसे वैजयंती माला बनती है। अंत में पांच विकारों पर विजय प्राप्त करते जावेंगे वो शांति धाम में ही रहेंगे या सुखधाम में भी जावेंगे? तो शांति धाम में जो तपस्या करने वाली तपस्वी हैं, आत्मिक स्थिति में रहने वाले 9 लाख आत्माएं हैं, उनकी संख्या घटेगी या बढ़ेगी? ट्रांसफर होते जावेंगे तो संख्या घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी। ट्रांसफर होते जावेंगे, एक तरफ दुनिया का पूरा हंस होगा और दूसरी तरफ माउंट आबू का भी हंस होगा और आखिरी आत्मा भी कहाँ पहुंचेगी? गोदाम में पहुंच जाएगी। और अरे सुनो तो, राम वाली आत्मा, हाँ,
तो विशेष करके पंचीय जो अलग अलग सोलह रहती है उनको जन्म देने वाली
है,
उनको जन्म देने वाली 84 जन्म, तो अलग अलग सोलह रहती है
किसको?
राम वाली आत्मा।
राम वाली आत्मा को प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने वाले दूसरी आत्माएं होती है या वो स्वयंभू होता है?
स्वयंभू
है। किससे? राम वाली आत्मा स्वयं ही स्वयंभू है या उसका भी कोई जन्म देने वाला है?
स्वयंभू।
स्थूल की बात है या ज्ञान में स्थूल की बातें होती है, हद की बातें होती है या सारी बेहद की बातें है? बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बेहद की बातें समझाती
है।
शंकर
शिव संकल्प मस्त विचार में आते
तीर कहते हैं किनारा, और कर माने करने वाला, किनारे को कहा जाता है ठिकाना, जैसे नाव चलती है ना, तो नाव एक किनारा छोड़ती है, मझधार में पहुंचती है, फिर लक्ष्य क्या है, है? मझधार में वही चक्कर काटते रहना, भंवर में या ठिकाने पहुंचना। तो जो दूसरे ठिकाने पहुंचना है वो है किनारा, तीर माने किनारा, कर माने करने वाला, माने भगवान जो है जिस तन में आता है मुकर्रर रथ में, उसके द्वारा किनारे पर लगाता है, इसलिए उसको जहाज कहा गया शास्त्रों में। शंकर चाप जहाज जेही चढ़ी उतरे पार नर, बूढ़ सकल संसार। ऐसे ही सिखों ने फॉलो किया है, नानक चाप जहाज, उन्होंने गुरु नानक को सदगुरु मान लिया, इसलिए वो उसको जहाज मानते हैं। तो तीर्थंकर पाटधारी कौन है, है? शिव बाबा ही तीर्थंकर का पाटधारी, जैनियों में उसे तीर्थंकर कहा गया, हिंदुओं में शंकर कहा गया। मैंने आपके ऊपर है, ठीक है।